कल की मुरली रिवाइज करते हैं। तो कल की मुरली में टॉपिक्स कौन कौन से थे?
याद,
एक तो याद, और प्यार, और साइंस के साधन, धारणा। कौन सी टॉपिक्स? टॉपिक्स मुरली से टॉपिक्स। हाँ, प्रिवेंटिव मेडिसिन, बरबर, एग्जाम, और
सौभाग्य के साथ
मिलन, प्रेरणा थीम, और
सबसे पावरफुल गुरु का याद।
वो याद में आ गया। टॉपिक्स टॉपिक्स, पहले हम टॉपिक्स लेते, कौन कौन से टॉपिक्स। पहला टॉपिक तो था मिलन, ठीक है। दूसरा टॉपिक था याद, तीसरा टॉपिक था साइंस के साधन, चौथा टॉपिक था बैलेंस, टू मच में नहीं जाना है, पांचवा टॉपिक था शरीर, शरीर की संभाल करनी है, प्रिवेंटिव मेडिसिन, और फ्यूचर सर्विसेज के बारे में थोड़े बाबा के डायरेक्शन, वो भी बाबा ने कहा खुद सोचो, बाबा थीम बताओ पहले खुद निकालो, बाबा पास करेगा, बाबा प्लानिंग बताओ तो बाबा ने पहले कहा खुद निकालो, तो वो। और टॉपिक्स, डर, फियर, फोबिया मैनेजमेंट, इशू दादी क्या कहा है वहां पर, कि डरने की बात नहीं, जो चीज के बारे में सोचते रहते हो वही हो जाता है, तो फियर मैनेजमेंट है। हाँ, वो दवाई के बारे में भी और वो भी। तो सबसे पहली बात है ये मिलन, मिलन, दूसरा याद, फिर मुरली से कुछ होमवर्क दो तीन, ठीक है। तो सबसे पहला था मिलन, ये मिलन कैसा मिलन है, अमूल्य मिलन है, अमूल्य मिलन का दिवस है एक। ये मिलन का अनुभव जो है वो साधारण नहीं है, मिलन का जो अनुभव है वो साधारण नहीं है, और
सोचा भी नहीं था,
भक्ति में सोचा भी नहीं था कि भगवान से ऐसा मिलन हो सकता है, और विचित्र मिलन, प्यारा मिलन, और सम्मुख मिलन, सम्मुख मिलन, साकार का मिलन, और संगम युग के बारे, संगम युग की महिमा करो तो क्या हो जाएगा, प्रभाकर भाई, आंखें नयन गीले हो जाएंगे। जिस समय परमात्मा का मिलन होता है आत्मा से, उस समय को संगम युग कहा जाता है, ये भी कहा ना। और मिलन कैसा है, ये कलयुग में ऐसी चीज मिल जाए, ये भाग्य की बात है, ये बहुत बड़ा भाग्य है। कलयुग में ऐसी कौन सी चीज, बाबा, तो ये भाग्य की बात है। और
आज शाम को भैया ऐसे योग में थोड़ा सा संकल्प चला था, सबसे मतलब जो हम कितना नॉर्मल लगते हैं कि हम एक आत्मा है जैसे, लेकिन ये कितनी बड़ी चीज है, सिर्फ इसी के आधार पर कोई कुछ प्राप्त नहीं कर सकता।
कल की जो पूरी मुरली जो है ना, इसी के आधार पर है, विधि है, बिंदी, तीन बिंदी लगाओ, तीन लकीरें, तीन बिंदी, सारे चीज की अशरीरी बनना है, कर्मातीत बनना है, विधेही बनना है, तो विधि है बिंदी, हर चीज की विधि बिंदी ही है। तो ये मिलन अमूल्य मिलन है, ये मिलन विचित्र मिलन है, ये मिलन अमूल्य है, विचित्र है, इस मिलन का अनुभव साधारण नहीं है, यह मिलन प्यारा मिलन है, ये मुलाकात प्यारी मुलाकात है, मन आनंद में आ जाता है इस मिलन से, इस मिलन से मन आनंद में आ जाता है, ऐसा ये मिलन है, दिल भर जाती है, दिल भर जाती है, दिल पूरी नहीं होती है, यह अनुभव ऐसा है कि दिल पूरी नहीं होती। वैसे कलयुग का उदाहरण, कलयुग में भी कोई भी सुख पूरा नहीं मिलता है, परंतु मनुष्य होता है, परंतु मनुष्य चाहता है वो नहीं होता है, मनुष्य जो चाहता है वो नहीं होता है, बाकी पहले तो कहा होता नहीं है, फिर कहा होता है, परंतु मनुष्य जो चाहता है वो नहीं होता है। तो कलयुग की ये वाली सब चीजें, फिर उसके बाद में ये जो मिलन है, ये तो मिलन कैसा है वो बताया, फिर इस मिलन के लिए होमवर्क है कुछ, ये मिलन सदा ही होता रहे, ये मिलन जो है वो दिल में इमर्ज रहे, इसकी प्रैक्टिस जरूरी है। किसकी प्रैक्टिस जरूरी है? ये मिलन जो हो रहा है, इस मिलन को और बढ़ाते जाना है, जितना हो सके उतना इसको बढ़ाना है। संगम युग पर ये मिलन प्राप्त हुआ है, जितना हो सके इस मिलन को बढ़ाते जाना है, ये है पुरुषार्थ। तो ये मिलन को बढ़ाते जाना ये होमवर्क है। दूसरा, ये मिलन दिल में रहे और इमर्ज रूप में रहे, इसकी प्रैक्टिस जरूरी है। तो भगवान से मिलन निरंतर होता रहे, ये मिलन के लिए होमवर्क का है। इसमें हम फिर से आएंगे वापिस। फिर बात है याद की। याद के लिए क्या
वीडियो देखते हो, चित्र
कहा?
देखते हो, कई बार
नहीं, वो
तो
साइंस के साधन के लिए नहीं, याद याद।
चिया व चित्र के सामने बैठ के उसको
ये दिल की,
बनाएगा
ये जो याद,
लगता है।
दिल की जो याद, तीन वर्ड है, एक दिल की याद, दूसरा है दिल का लगाव, और तीसरी जगह है दिल का प्यार। तो दिल की याद का चित्र देख, फोटो देख बाप दादा खुश होते हैं। फिर दिल का प्यार, दिल का मिलन, सॉरी, सेकेंड इज मिलन, दिल का मिलन का चित्र देखो तो हर एक लव में लीन है, ये सेकेंड। और थर्ड फिर है दिल का लगाव। दिल का लगाव के लिए कहाँ बोला? आगे, जो छोटे बच्चे का उदाहरण दिया ना, छोटे बच्चे को भी दिखाओ तो वो भी पूछता है ना कि फोटो दिखाओ, तो बाबा बोल रहा है। वो चाहे कोई भी हो, चाहे अनजान आत्मा हो, चाहे छोटा बच्चा हो, अगर उसे फोटो दिखाओ तो वो भी कहता है कि बाबा बोल रहा है, मतलब मुरली चला रहा है। तो वो है दिल का लगाव। तो एक था दिल का लगाव यहां पर, और दूसरा था दिल के मिलन का चित्र, एक था दिल के याद का फोटो देख बाप दादा खुश होते हैं। वैसे अलग अलग तीन जगह बाबा ने थोड़ा घुमाया है गोल गोल। तो ये था याद। अभी याद के लिए क्या होगा कि याद मुश्किल, भूलना मुश्किल है। वो हाथ खड़े करो, याद भूलना जिनको मुश्किल है वो हाथ खड़े करो। और दूसरा उसी में होमवर्क था सारे दिन के लिए, चेकिंग पॉइंट, वो कौन सी थी? याद कितना रहता, कैसा किया। सारे दिन भर इम्तहान, फाइनल पेपर, अचानक का पेपर लेंगे, क्या पेपर लेंगे, क्या इम्तहान लेंगे, इम्तहान लेंगे कि कितना समय याद के लिए निकाला और कैसे याद किया। दोनों चीजें वहां पे, कितना समय निकाल के याद किया और कैसे किया, वो बाप दादा देखेंगे। वो भी अचानक, वो भी पेपर, इम्तहान। तो वो था याद के लिए होमवर्क कि याद जो है वो कैसी।
ऐसे भी हाथ खड़ा करते हैं आप?
आज सुबह वो क्लास में हाथ खड़ा कराया, किसी ने नहीं किया, बाबा के सामने सबने कर
नहीं यार, हमारी तो
दिया
हिम्मत नहीं होती है मेरे
नहीं, पर इसके लिए बाबा ने बहुत बार, हमने ऐसा किया
भी
नहीं किया, पर
ये
बाबा ने कहा है बहुत मुरलियों में। अभी देखो पॉजिटिव पॉइंट, हाथ
हिम्मत
खड़ा किया मतलब उसके भी मार्क्स से, मतलब हिम्मत तो दिखाई। हाँ, हिम्मत तो दिखाई। एक मुरली थी पिछले लास्ट सीजन की, 25 दिसंबर की, 31 दिसंबर की, उसमें बाबा ने बहुत बार हाथ खड़े किए, ठीक है। फिर उसमें एक हाथ ऐसा खड़ा किया कि जिन्होंने हाथ नहीं खड़ा किया वो हाथ खड़ा करो, तो उसमें फिर बोला कि अभी इनको हिम्मत चाहिए। तो मतलब हिम्मत वो भी देखते हैं, हाथ खड़ा करने के भी मार्क से है
लेकिन कुछ दिन साकार मुरली, कुछ दिन पहले साकार मुरली
वो
हुई थी
भी।
ना,
हाँ,
कि वो स्टूडेंट्स होते हैं उनको तो पता होता है कि टीचर ने होमवर्क किया है
वो
नहीं
सब
किया,
बातें सही है, परंतु बाबा ने ये भी
नोट्स
कहा है मार्क्स है, नहीं तो मार्क्स गए। और हम हाथ खड़ा करते मतलब हिम्मत दिखा रहे हैं कि आगे करके दिखाएंगे। हाँ, तो इसके लिए हो ना हो कर देना हाथ। क्या क्या? हाँ, किसकी सभा थी, कौन सी सभा थी, किसके सामने हाथ खड़ा, ब्राह्मण इतने सारे बैठे थे, कौन सा हॉल था, कौन सी तिथि तारीख और नक्षत्र चल रहे थे, सारा याद करो। तो फिर वो थोड़ा ये होगा करने के लिए, इसके लिए वो जरूरी है। तो हिम्मत नहीं होती वो तो अच्छी बात है। आधा आधा करो करने, पर आधा खड़ा कर दो तो बाबा कहते पूरा करो, आधा क्यों कर रहे हो, एक खड़ा कर दो तो बोलते दो करो। हाँ, वो तबीयत, दो चीज के बारे में हाथ खड़ा किए, तो एक ही। तो याद भूलना मुश्किल हो, ऐसी कोई याद। फिर सहज याद की परिभाषा दी है, एक दो तीन, क्या कहा? सहज याद, याद किसको कहेंगे जो बिना साधन के, पहली परिभाषा तो ये है,
एमएल चेस में।
और फिर दिल में इमर्ज रूप में हो, और दिल में हो और निकालना 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 चाहे तो भी नहीं निकले, समाई हुई हो। ये सेकंड डेफिनेशन है। थ्री डेफिनेशन, पहला कि बिना साधन के, दूसरा समाई हुई हो, और तीसरा निकालना चाहो तो भी ना निकले। नहीं, उस पे आएंगे हम अभी ना, अभी आ रहे हैं साधन पे। वो तो बड़ा चर्चा का टॉपिक है, जबरदस्त, कांच क्या है और कैसा नहीं है। तो वो हो गया याद के बारे में। फिर उसके बाद में तीसरा, ये तो सेकंड टॉपिक था याद। फिर उसके बाद में साइंस, साइंस के लिए क्या कहा, साइंस के साधनों को शाबाश की करिए, वेरी गुड, वाह बच्चे वाह, वाह साइंस के बच्चे वाह, बाप दादा भी खुश होते हैं। मिलन का रास्ता देखते भी है, सुनते भी है, अनुभव भी कर सकते हैं। ये तो दो बातें बाबा ने कही, पर बाकी भी और चीजें होती है। साइंस के साधनों से अनुभव भी कर सकते हैं, सम्मुख भी मिलन मनाते हैं, दूर होते हुए भी सम्मुख मिलन मनाते हैं, नजदीक मिलन मनाते हैं, ऐसे जैसे अनुभव भी होता है उनको वहां पर। जो यहाँ अनुभव होता है वहां भी अनुभव होता है रूबरू। हाँ, वो एक दूसरी पॉइंट कही, कि एक निगेटिव पॉइंट कही है साधनों के बारे में बाबा ने कि रूबरू तो नहीं हो सकता है मिलन, जो रूबरू होता है ना आमने सामने मिलन, वो नहीं हो सकता है बाहर, परंतु बाप दादा के नैन चैन शक्ल मिलन, ये संगम युग का मंडल है। तो इसका अर्थ यही है कि रूबरू भले मिलन नहीं होता है, परंतु उसके नयन ये चैन इनसे मिलन हो रहा है, ये वंडर है, ये संगम युग का वंडर है। तो वो वाली एक थोड़ी सी निगेटिव बात यहां पर बने। रूबरू मीन्स सामने सामने, फेस टू फेस, फेस टू फेस मुखातिब जिसको कहते हैं, एकदम आमने सामने जो है, तो वैसा नहीं है, परंतु बाप दादा के नयन चैन वो सब है। तो वो और साइंस के बारे में और क्या कहा, नई नई इन्वेंशन और भी निकालते जाओ, बढ़ोतरी करो। और हाँ, बाबा ने ये पॉइंट तो बहुत अच्छा कहा, और भी नजदीक का कुछ होगा तो देखो, जिससे बाप भी खुश और बच्चे भी खुश, ऐसा और भी कोई नजदीक का होगा तो देखो, और अगर बच्चों को पता चल जाए उसके पीछे पड़ जाए, योग लगाए कि इन्वेंशन निकालने के लिए।
टीवी का एडवांस क्या होगा भैया, 3D 5D
एडवांस
हाँ,
हाँ, फोर।
थ्री डी साउंड वैसे तो
अभी फाइव डायमेंशन में FD, फाइव इज साउंड,
बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आप
सामने है, एकदम एकदम जैसे ऐसे ऐसे। तो और भी निकलेगा वो भी हो सकता है, बाबा ने तो बोला है ये तो होगा। तो और साइंस के लिए क्या कहा, साइंस के साधन,
ये तो अपने हाथ में है ना भैया, हम 5D लगवाएंगे तो वो तो हमारे लिए
बाप और बच्चों के मिलन का संगम युग पे दो चीज साथ है, कौन कौन सी, एक तो बाप साथ है और साइंस के साधन साथ है। देखो साइंस के साधन ने अपने लेवल पे रखा हुआ बने, साइंस के साधन संगम युग पे दो चीजें साथ है, एक तो बाप साथ है और साइंस के साधन साथ है। तो बाप साइंस और बाप के साइंस के साधन और बाप, ये दो चीजें साथ है। ये साइंस के साधन निमित्त बने हैं बाप से मिलन के, इनको निमित्त बनाया, इसके लिए इनको शाबाश की, इनको वाह वाह, इनको धन्यवाद, इनको थैंक्स, ये जो इन्वेंशन कर रहे हैं वो सब बातों के लिए। तो ये तो हो गया साइंस के बारे में या साइंस के साधनों के बारे में। उसके बाद में और दूसरा टॉपिक मुरली से फिर। हाँ, कोई कोई बच्चे जो अकेले में, कोई कोई है जो चुपचाप है, कोई कोई है जो अकेले में है, तो परंतु ऐसे बैठे हैं जैसे कि सामने कोई है, जैसे बाप दादा सामने, बाप दादा के लिए कहा है कि जैसे वो किसी को, किसी से बात कर रहे हैं आमने सामने, ऐसे बच्चों को भी याद किया बाबा ने। फिर विदेशी है, उनके बाबा ने दो विशेषताएं सुनाई, एक तो पैसा और दूसरा दिल की लगन। पैसा इकट्ठा करते हैं, ये जो पैसा इकट्ठा करना है ना, इसके लिए बाबा ने कहा। तो हाँ, उनके दिल में हमेशा रहता है कि कब पहुंचे, कब जाए, कब पहुंचे, मधुबन जाना है, मधुबन जाना, ये दूसरी जगह का, मधुबन जाना है, मधुबन जाना है। तो ये और इस समय जब यहाँ मुरली चलती है तो वहां पर भी वो जैसे अटेंशन दे के टाइम निकाल के बैठते हैं मुरली के लिए, वो भी डबल विदेशियों के लिए कहा।
आपको 12 बजे चलती है।
हाँ, तो और ये तो एक पहले पैसों की बात, और दूसरी कहा दिल का लगाव, दिल का, दिल लगन, उन आत्माओं में भी दिल की लगन है। तो ये दो चीजें विदेशियों के लिए भी कही। फिर उसके बाद में विदेश की बहनें, जो शरीर की संभाल के लिए कहा है, प्रिवेंटिव मेडिसिन है ये। क्या कहा कि पहले से ही तो पता है ना, मतलब अपने छोटे मोटे डॉक्टर तो बन ही गए, ये सबके लिए है, पहले से पता है कौन सी बीमारी की क्या निशानी है या कौन सी दवाई है या क्या होने वाला है, ये पहले से ही पता है। तो शरीर की संभाल करो, इस पे भी हम चर्चा करेंगे थोड़ी। तो ये विदेश की बहनों के लिए का। फिर उसके बाद में वो डर के लिए, क्या कहा, डर के लिए जो घबराना नहीं है, क्योंकि जिस चीज का सोचते हो वो हो जाता है। ये फियर का बहुत बड़ा साइकोलॉजी है, इसमें मनोविज्ञान है। जिस चीज के बारे में व्यक्ति सोचते रहता है ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वही हो जाता है। इसके लिए उसको थोड़ा सकारात्मक चेंज करना पड़ता है। एक तो ये बात कही, उसके बाद में बाबा से थीम पूछा तो वो बोल दिया तुम करो, मीटिंग का क्या करें वो प्लान तुम करो, फिर बाबा पास करेगा। वो तो बाबा ने ये कर दिया। फिर वो जो छत है डबल बनाई है छत, तो अच्छा है और बना, तो साइंस के साधन बढ़ते जाएंगे कि बाबा को कहा ना वो बच्चे बाहर भी है दूसरे हॉल में, इधर जगह नहीं, तो बाबा ने कहा उसमें नुकसान ही क्या है, ये कहा ना उसमें नुकसान ही क्या है। अच्छा स्टेटमेंट बोला बाबा ने, उसमें नुकसान ही क्या है। फिर ये चीज बोला, फिर साधन के वशीभूत नहीं होना है, टू मच में नहीं जाना है, ये अच्छी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। साधन ये अच्छा चल रही है
ना,
हाँ वो वाली पॉइंट उस पे आते हैं। तो फिर हाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि बाबा अगले सीजन में मतलब शरीर का भी थोड़ा ध्यान रखो, पहिया वगैरह। तो बाबा ने बहुत अच्छा कहा यहाँ पर कि ड्रामा में जो होना है वही होने वाला है, आप भले राय दो परंतु ये नहीं कहो कि ये होना चाहिए बाबा। क्योंकि अगर ऐसा कहे कि नहीं आए तो फिर दो ग्रुप्स बताए उसमें भगवान, एक तो वो जो आना जिनके टर्न में आए वो खुश हो जाएंगे, और जिनके टर्न में नहीं आए उनके संकल्प चलेंगे। तो वो सभी खास है यहाँ तो, और हर एक टर्न में 20, 30, 23, 24, 25 हजार जो आते हैं। तो इसके लिए ड्रामानुसार जो होना है वो होगा, आप खाली राय दो, ये नहीं कहो क्या होना है। हाँ, ये वो क्या कुछ अनक्लियर है वो थोड़ा वाक्य, वो क्योंकि बीच बीच में माइक हटाते हैं ना, तो उसमें भी कुछ कुछ चीजें रह जाती है,
काफी देर बोल रहे थे कुछ
कुछ कुछ कुछ कुछ चल रहा है, वो तो थोड़ा थोड़ा लिखा है उसमें। तो मुरली का जो मेन थीम जो है, मतलब जिसमें है ये इतनी सारी बातें की चर्चा हुई है पूरा इसमें बाबा ने, तो मेन जो सबसे फर्स्ट है कि ये मिलन जो है इसको बढ़ाते रहना। ये क्या नहीं होना चाहिए, हाँ साधना के बेसिस, जैसे कुछ दिन पहले वेनसडे को वरदान था ना, जो फाउंडेशन है रेत पे अगर कोई बिल्डिंग बनी है तो गिर जाएगी, उसी तरह साधना अगर साधन पे निर्भर है तो वो गिर जाएगी, वो लंबा समय नहीं चल सकती। इसके लिए सिद्धि साधना में, अगर सिद्धि चाहिए वो साधनों के अधीन नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी बाबा ने कहा बैलेंस की बात कही है, टू मच में नहीं जाना है, वो टोली की बात चल रही थी ना, इसमें भी बेफिक्र नहीं बनना है, बेफिक्र नहीं बनना है। तो याद को बढ़ाते जाओ, या फिर याद को चेकिंग करते जाओ, या मिलन को बढ़ाते जाओ, एक ही चीज है, याद को हो मिलन को, मिलन को बढ़ाते जाओ। कैसे, ये टॉपिक, मिलन को बढ़ाते जाना अर्थात याद को बढ़ाते जाना अर्थात योग को बढ़ाते जाना। पिछली जो सीजन की मुरली चली थी पढ़ाई के ऊपर चली थी, ज्ञान के ऊपर, ये जो मुरली है ये योग के ऊपर है,
ज्ञान योग
ज्यादा योग के ऊपर, कि जिसमें बाबा कह रहे हैं क्या बढ़ाते जाओ, अपना याद बढ़ाते जाओ, ऐसी याद हो कि जिसमें भूलना मुश्किल हो, जिसको कहते हैं सताने वाली याद, वो कब होती है, हाँ दिल की याद हो समाई हुई, कब सताने वाली, मतलब बाबा कहे मुश्किल हो भूलना ही मुश्किल हो, जब अटूट स्नेह होता है, बहुत ज्यादा स्नेह होता है, या फिर स्नेह में जब विघ्न पड़ते, संसार में लैला मजनू रोमियो जूलियट, उनके उनका स्नेह बहुत ज्यादा था, क्यों
मिलते
वो मिलते नहीं थे और लोग बीच में कुछ कुछ करते रहते थे। तो लोग जब प्यार में बाधा होती है तो ज्यादा होता है मिलन, थोड़ा एकदम, और जैसे अभी ब्राह्मणों को कोई कह दिया जाए कल से बिल्कुल कोई मुरली नहीं जाएगा, मतलब कोई ऊपर का नहीं नीचे का कोई दूसरा कह दे, तो और ही हमको फिर तीव्र लगन उत्पन्न हो जाएगी, हमको तो जाना ही है, या संसार में कोई कुमार या कोई सेंटर इस तरह से कुछ हो जाए तो और लगन बढ़ जाएगी उधर, ऐसे हो जाता है। जब विघ्न पड़ता है ना, जैसे वैराग में अगर विघ्न डाल दिया जाए तो वो वैराग बढ़ जाता है। इसके लिए कोई वैराग आए तो चुपचाप उसको बोलना चले जाए, निकल जाए, आ जाएगा वापस, अगर झूठा वैराग्य हो गया तो। अगर सच्चा अगर वैराग आ गया और उसमें माँ बाप ने रोका तो मतलब ये सन्यासी पक्का बनना ही है, फिर तो कोई कुछ नहीं कर सकता। इसके लिए अगर घर में किसी को वैराग आ गया और आप चाहते हैं कि ये न जाए तो उसको रोकना नहीं, चुपचाप जाने देना, रोका तो गए तो वो पावरफुल बन जाएगा फिर। ये गुप्त बात है माता पिता के लिए, इधर हमारे लिए नहीं है, तो सीक्रेट। तो वैराग में अगर विघ्न पड़ता है, प्यार में अगर विघ्न पड़ता है तो वो बहुत बढ़ जाता है, फिर वो सताने वाला हो जाता है, न चाहते हुए भी याद आती है उसकी। क्योंकि मनुष्य के मन की एक साइकोलॉजी है कि उसको अगर कहो, जैसे कभी कभी ये भी संकल्प अपने मन को दो कि आज मैं बाबा को बिल्कुल याद नहीं करूंगा, फिर देखो क्या होता है दिन में। ये एक मनुष्य, जैसे एक व्यक्ति था, वो एक साधु के पास गया तो उसको कहने लगा कि आप तो बड़े सिद्ध पुरुष हो, मुझे कोई मंत्र दो। वो बोले मैं कोई सिद्ध पुरुष वगैरह नहीं हूं, जाओ यहां से भागो। तो उसको भगा देता है, एक बार भगाता है, दूसरी बार भगाता है, तो उसको बार बार ये करता है, पर ये पीछे ही छोड़ता नहीं उसको। बोलते जब कोई साधु पत्थर जो मारते हैं ना, उनके पीछे तो ज्यादा लगते हैं लोग, उनको लगता है इनके पास जरूर कुछ है, कुछ तो है। तो वो ऐसे ही साधु था, सबको पत्थर मारता था, जो भक्त आते थे ना उनको भगाता था वो साधु, और जितना वो भगाता था भक्त और पीछे पड़ते थे उसके, क्योंकि वो इससे समझा जाता है बहुत सिद्ध पुरुष है। तो वो व्यक्ति उसके पास जाता है, कहता है कि मुझे कैसे भी करके मंत्र तो आप दो ही। फिर वो रो जाता है तो वो कहता है ठीक है चलो देता हूं तुमको मंत्र। तो वो उसको एक पेपर पे कुछ एक दो लाइन लिख के देता है, बोलता है ये है मंत्र। तो वो इतना खुश हो जाता है, इतना खुश हो जाता है कि वो बस जाने, तो धन्यवाद भी नहीं करता है उसको, बस अब जाने को ही निकलता है कि ये अगर मंत्र तुम कल सुबह से चालू कर दो पढ़ना तो तुमको सिद्धि मिल जाएगी। तो वो जाता है, जाता है, उसके गुफा होती है, और जब बिल्कुल दरवाजे पे रहता है, बोलते एक बात पर याद रखना, मंत्र तो पढ़ना है तुमको पर बंदर को बिल्कुल याद मत करना। जब मंत्र कल पढ़ोगे ना तो बंदर को याद नहीं करना, बाकी मंत्र पढ़ लेना, तुम्हें सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। तो मतलब मंत्र बंदर से मेरा कह लेना देना, आज तक मैंने बंदर के बारे में कभी सोचा भी नहीं, तो क्यों मैं बंदर को याद करूंगा, मेरे को तो कोई लेना देना ही नहीं, बंधन से मेरा कोई संबंध ही नहीं है आज तक, मैं क्यों बंदर को याद करूंगा। तो ऐसे विचारों के साथ जाता जाता रहता है, तो देखता है झाड़ियों में कौन है, बंदर जैसा दिखता है उसे कोई, तो ऐसा नहीं, फिर दिखता रहे नहीं ये तो बंदर नहीं कुछ और है। फिर जाता है तो ऐसा लगता है बंदर पीछे आ रहा है कोई, पीछे देखता है तो बंदर तो है ही नहीं। तो बोलता है अरे ये क्या मैं कर रहा हूँ, बंदर से मेरा क्या लेना देना है, मुझे तो बंदर के बारे में सोच तक नहीं है, मैंने आज तक कभी सोचा ही नहीं है, मतलब बंदर से कोई लेना देना ही नहीं है तो क्यों सोचूंगा कोई। और अभी तो मतलब मंत्र पढ़ते समय तो बिल्कुल भी नहीं सोचना है, क्योंकि मंत्र से सिद्धि मिलने वाली है। तो घर जाता है, स्नान करता है तो देखता है अपने बाथरूम में बंदर, बोलते ये कहा यहाँ क्या कर रहा है। तो बाथरूम में भी बंदर दिखता है, फिर जब सोने लगता है तो सोने लगता है तो देखता है बाजू में बंदर भी सो रहा है। तो फिर बोलते ये क्या हो रहा है मुझे, फिर स्वप्न देखता है तो स्वप्न में बंदर ही बंदर दिखते हैं। तो फिर कहता है बिल्कुल अभी मैं संकल्प करता हूँ, दृढ़ संकल्प करता हूँ कि बिल्कुल बंदर बिल्कुल आना ही नहीं चाहिए। फिर सुबह स्नान करता फिर बंदर, फिर बैठता है मंत्र जाप के लिए, तो मंत्र जाप करने के जैसे बैठता है केवल बंदर ही बंदर दिखने लगते हैं। मतलब ऐसी अवस्था आ जाती है शाम तक कि बंदर और मंत्र एसोसिएशन हो जाता है दोनों का, ये याद आया तो वो याद आना ही है, मतलब इट इज नॉट पॉसिबल कि अभी ये दो विभक्त हो जाए, अलग हो जाए, बिल्कुल एक ही। आखिर में वो अपने गुरु के पास जाता है, कहता है ये लो तुम्हारा मंत्र, अभी तो ये दूसरे जन्म में ही संभव है, इस जन्म में तो ये मंत्र जैसे ही पढ़ूंगा साथ में बंदर तो इतना मतलब सबकॉन्शियस माइंड में चला गया है कि ये दो चीज अलग हो ही नहीं सकती है, इतना दोनों का संबंध हो गया है। तो कहता है अभी मैं अगले जन्म में आऊंगा आपके पास, ये जन्म में तो ये संभव ही नहीं है इन दोनों को अलग करना। तो मनुष्य का मन ऐसा है कि उसको अगर जो कहो ये नहीं करना वही हो जाके करता है, ऐसा उसका स्वभाव है। इस स्वभाव को थोड़ा समझ लेना जरूरी है। पाश्चात्य जगत में एक वैज्ञानिक बहुत बड़ा एक ये हुआ है मानव चिकित्सक सिगमंड फ्राइड जिसका नाम था, उसने बहुत सारे सिद्धांत रखे हैं। उसने अपनी जीवन कहानी में एक चीज लिखी है कि वो एक बार अपनी बीबी और बच्चे के साथ में एक बगीचे में जाता है, गार्डन में सारे दिन भर इधर उधर घूमते, शाम को जब जाने निकलते हैं तो बच्चा है ही नहीं, तो बच्चे को ढूंढने लगते हैं दोनों, कहीं पर भी नहीं मिलता है बच्चा, पत्नी भी ढूंढती है वो भी ढूंढता है, फिर वो अपनी पत्नी को कहता है कि तुमने उसे कहीं न जाने के लिए कहा था? वो कहती है हाँ, वो फवारे के पास नहीं जाने के लिए कहा था उसको, कि फवारे के पास बिल्कुल नहीं जाना। वो कहता है जा, वो वहीं होगा। तो वो जाता है, देखता है बच्चा वहीं पे है। तो जो मन को कहा जाए वो उस बच्चे के जैसा, उसको अगर जबरदस्ती कुछ कहो ना तो वो वहीं वहीं जाता है। उसी तरह काम विकार का ही द्वापर से अब तक। काम विकार किसके वजह से बढ़ा? नास्तिक नास्तिकवादियों की वजह से नहीं पड़ा, ये जो साधु संन्यासी योगी है ना, इनके वजह से ज्यादा बढ़ा। इनके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है तथाकथित, क्योंकि इन्होंने इसका एक अलग ढंग से विरोध किया है। जिस तरह से काम विकार का विरोध द्वापर से किया कि बिल्कुल ये नहीं ये नहीं ये नहीं, तो और जिज्ञासा जागृत हुई, क्या है क्या है क्या है, और वो जिज्ञासा ही जागृत होने के बाद में डुबो देती है व्यक्ति को। क्योंकि वो जिज्ञासा जब जागृत होती है तो जानने का कोशिश करता है व्यक्ति, और वो जिज्ञासा बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है, और जब तक जानता है वो संस्कार बन जाता है। तो ये जो सूक्ष्म एक बात है कि मन का ये स्वभाव है कि उसको जो मना करो जबरदस्ती, इसके लिए उसको मना नहीं करो, उसको समझाना है प्यार से, उसको समझ देनी है। जैसे हमको किसी ने समझाया क्या बाहर का नहीं खाना, कितना भी अच्छा बनो हम जाके खाते हैं क्या? क्यों? समझ मतलब अच्छे से। अगर कोई बाहर के लोग आते इधर, एक चार दिन के लिए आ गए कोई, वो आते ना पीस ऑफ इनर पीस इनर पावर इस तरह के, उनको कहो कि बाहर का बिल्कुल मत खाना तो बेचैनी हो जाएगी। या इधर मौन है भट्टी, तो जो नए लोग हैं एकदम, उसको बोला दिन भर मौन रहो, तो एकदम ये हो जाएगा, पागल हो जाएगा वो, क्योंकि उनके पास समझ नहीं है। तो समझ जैसे आती है अपने आप वो चीज हो जाती है। मतलब जैसे प्रकाश आता है तो अंधकार विलीन हो जाता है, मतलब अंधकार है इसका अर्थ प्रकाश है ही नहीं, दो चीजें एक साथ नहीं रह सकती, प्रकाश और अंधकार, ये है तो वो नहीं, वो है तो ये नहीं। इसके लिए हमारे जीवन में अगर दुख है तो अर्थात ज्ञान पूरा नहीं समझ में आया। कोई भी दुख है, कोई भी पीड़ा है, कोई भी पुरुषार्थ ठीक से नहीं हो रहा है, मतलब ज्ञान नहीं है। ज्ञान को बढ़ाओ बस, और ज्ञान मुरलियों में कहीं ना कहीं छिपा है। मुरलियों के लिए भी बाबा ने कहा मुरली खजाना है, खजाना है ना, कहा ना इसी मुरली में कि वो लोग भी भाग भाग के मुरली सुनने जाते हैं, मुरली की मुरली दिल मुरली से है, मुरली से दिल कितनी है, मुरली क्योंकि खजाना है, ये कहा इसी मुरली में। तो हम बात कर रहे थे कि प्रकाश और अंधकार, ये दो चीजें एक साथ नहीं हो सकती, एक तो ये है या वो, अगर वो है इसका मतलब प्रकाश नहीं है जीवन में, प्रकाश अर्थात ज्ञान। एक बार वो प्रकाश और सूरज और अंधकार का झगड़ा हो जाता है, तो अंधकार जो होता है वो जाता है भगवान के पास और कहता है उससे कि ये सूरज मुझे बहुत परेशान करता है, मुझे बहुत तंग करता है, मैं अभी रात में विश्राम ही करने बैठता हूं कि सुबह सुबह आ जाता है और मुझे भगा देता है, मुझे थोड़ी देर और भी विश्राम करने का रहता है, बहुत मैं इससे दुखी हूं, आप इसका कुछ करो। तो भगवान कहते हैं अच्छा सूरज की ये मजा, सूरज को बुलाते हैं कि सूरज तुम इसको बहुत दुख दुख दे रहे हो अंधकार को, ऐसे क्यों करते हो? कहते अरे मुझसे बहुत गलती हुई, पर मेरे से ये पूछा मेरे से गलती क्या हुई वो तो बताओ। वो कहते तुमने इस तुम्हारी वजह से ये बहुत दुखी है। बोलता है कौन, कम से कम मेरे सामने तो लाओ ताकि मैं माफी मांगू। परंतु आज तक उन दोनों का मिलन नहीं हुआ है, क्योंकि वो दोनों एक साथ नहीं आ सकते। अंधकार है इसका मतलब सूरज वहां नहीं है। जीवन में दुख है, कोई कमी कमजोरी ये जो भी है, मतलब हमारे पास अभी ज्ञान पूरा नहीं है। इसके लिए ज्ञान की जो प्यास है ना वो निरंतर कायम रहनी चाहिए, वो कम नहीं होनी चाहिए। इसके लिए ज्ञान बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो हम बात कर रहे थे मनुष्य का मन, जो उसको नहीं कहो वही वो भागता है। अगर उससे कुछ करवाना है, जो यहां बोल रहे बाबा की याद भूलना मुश्किल हो, मतलब इसका अर्थ है कि याद सदा बनी रहे, तो इसको अगर जबरदस्ती करेंगे तो भूल जाएगा, दिल तो भूलना ही है जबरदस्ती अगर ज्यादा करेंगे। इसके लिए उसको समझाना है, फिर उससे कैसे समझाएंगे कि उससे फायदे क्या है, अपने मन को यह समझाना, उससे नुकसान क्या है न करने से वो समझाना। और हमने ही जीवन में जो जो गलतियां की है वो उन क्षणों में की है जब याद नहीं थी, ये भी उसको समझाना, अनुभव से सीखना है। तो ये होमवर्क था मुरली का कि मिलन को बढ़ाते जाओ, जितना हो सके बढ़ाते जाओ, याद सारे दिन भर चेक करते हो, बाबा अचानक पेपर लेगा, इम्तिहान अचानक लेगा कि कितना कौन याद में रहता है और कैसे याद करते
इसका
हैं।
तरीका क्या है?
हाँ, तरीका क्या है याद करने का, ऐसे नहीं कि कैसे भी याद, कैसे याद करते हो और कितना समय निकालते हैं। और फिर तीसरा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है साधन, वह है साइंस के साधन। साइंस के साधनों का फायदा भी है और नुकसान भी है। फायदे तो बहुत सारे हैं, जैसे इसमें मुरली पढ़ सकते हैं, तीन साधन लेंगे हम खाली, मोबाइल, टीवी और इंटरनेट, बाकी छोड़ दो। इसमें मुरली भी पढ़ सकते हैं और क्या कर सकते हैं, गीत सुन सकते हैं, क्लास सुन सकते हैं, मिलन मना सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं,
बाबा की भाषण ले सकते
भाषणा अनुभव सब कुछ ले सकते हैं, और मोबाइल से मैसेजेस, व्हाट्सएप, वो जो ग्रुप्स और उसमें मुरली आती है, जो ज्ञान का मटेरियल आता है उसकी लेन देन, वो सब कुछ हो सकता है उससे। और
सेवा कर सकते
सेवा कर सकते हैं,
सेवा
कौन सी सेवा, क्लासेस फॉरवर्ड करना, स्पेशल क्लास हमको आया, अरे स्पेशल फॉरवर्ड उसके पास गया, स्पेशल फॉरवर्ड, वो स्पेशल फॉरवर्ड 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 वापस वापस, ये तो बहुत ही स्पेशल था, इधर ही आ गया वापस। और बाकी सब ने क्या किया, दूसरों का कल्याण, क्योंकि विश्व कल्याणकारी है ना, ब्राह्मण अर्थात तुरंत कल्याण करो दूसरों का, आया मतलब इधर भेजो उधर भेजो उधर भेजो, और जिसके पास जाता है वो सोचता है मुझे दूसरों का कल्याण करना है, तो अपना निस्वार्थ तो देना है। कल की मुरली में भी ये पॉइंट है, देना है, ब्राह्मण ब्राह्मणों को एक दूसरे के सहयोगी है, देते चलो, खुशी दो, आनंद दो, प्रेम की अनुभूति कराओ, शांति की अनुभूति कराओ, बिना मांगे दे दो, मास्टर दाता बन दो, बन जाओ महादानी, बन जाओ ये सब बन जाओ। पर इसमें नहीं, कोई भी चीज तब तक फॉरवर्ड नहीं करनी है जब तक उसको खुद पढ़ा हुआ देख लिए, पढ़ा नहीं है और सुना नहीं है, उसके बाद ही फॉरवर्ड करना, नहीं तो ये बस ये यही चल रहा है, बस इधर से उधर उधर से उधर उधर से उधर उधर से उधर उधर से उधर जा रहा है। पहले खुद तो स्वयं का कल्याण करो, बाद में दूसरों का। ये पुरुषार्थ स्वार्थ शब्द है उसमें, स्वार्थ बहुत अच्छा शब्द है धर्म में, स्वार्थ अर्थात स्व के लिए, धर्म अर्थात स्वार्थ, परंतु वो गलत हाथों में चला गया शब्द बाद में, इसके लिए उसका अलग परिभाषा है, इट हैज गॉन इन रॉन्ग हैंड्स, स्वार्थ तो दूसरा हो गया, सेल्फिशनेस हो गया उसका। पर बाकी स्वार्थ का अर्थ है जो पुरुषार्थ स्व की उन्नति के लिए, मोक्ष के लिए किया जाता है, उसे स्वार्थ कहते हैं धर्म के अनुसार। तो यहां स्वार्थी बनना है, किसमें, इस चीज में, तो साधन। तो और फायदे इसके, न्यूज अलार्म, वो तो बहुत सारे, फिर इस तरह के अलार्म हो गया, वॉच हो गया, सब कुछ, रिमाइंडर, प्लानर, पूरा कल्प वृक्ष तो उसमें बहुत सारी चीजें। दूसरा है टीवी, टीवी में भी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं, और फिर है इंटरनेट, इंटरनेट में भी आप बहुत कुछ ढूंढ सकते हो, सर्च कर सकते हो, जैसे मुरली का कोई शब्द है उसका अर्थ तुरंत ढूंढ सकते हो, जैसे कोई वाक्य है जिसका कोई कहानी आ जाती है वो पता नहीं हमको कौन सी है, वो उसमें ढूंढ सकते हो। पहले के जमाने में पहले कितना मुश्किल होता था, अगर मुरली में कोई पॉइंट आ जाए और कोई शब्द आ जाए कठिन, अब कहाँ ढूंढे, वो तो किताबें चाहिए, लाइब्रेरी में जाओ और ढूंढो, अभी तो तुरंत डालो और मिल जाता है। तो ये इंटरनेट के कुछ फायदे हैं, तो मोबाइल, टीवी, इंटरनेट, अब फायदे तो गिना दिए, अभी आगे की बात है, वो है बाबा ने कहा अति में नहीं जाना है, टू मच में नहीं जाना है, बैलेंस रखना है और वशीभूत नहीं हो जाना है साधनों, मतलब आज है और कल नहीं हो तो भी कुछ नहीं। सपोज सोचो इलेक्ट्रिसिटी चली जाए 5 दिन के लिए, ज्यादा से ज्यादा 4-5 दिन चलेगा, फिर तो बंद होना है इसको, बंद होने के बाद में ये इट इज जस्ट बॉक्स, बस डब्बा बन जाएगा ये, इसका ज्यादा महत्व नहीं है क्योंकि चालू ही नहीं होगा, वो अलग है, रेंज नहीं है, इंटरनेट नहीं है, आप गीत भी सुन सकते हो, मैं बात कर रहा हूं कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वो बंद ही हो गया पूरा, अब इसका क्या महत्व है बताओ, बंद है वो, चार्जिंग जीरो, एक डब्बा है बस। अच्छा, वैसा होने के बाद क्या ब्राह्मणों की स्थिति शक्तिशाली रहेगी या हलचल में आएंगी,
बैटरी डाउन हो जाती है,
वही पूरा बैटरी डिस्चार्ज हो गई फुल।
खुद की भी हो जाती है,
अच्छा खुद की
अच्छी भी लगती है,
क्या
डिस्चार्ज हो गया,
हाँ वो अच्छी अवस्था है, पर ऐसे सबकी नहीं है, बेचैनी। दो दिन एक दिन अगर रेंज नहीं रहता बीएसएनएल में, कैसे हालत हो जाता है सबका, हलचल में आ जाती है कि नहीं? क्यों अलार्म नहीं बजा? हाँ वो एक है सीधा। तो ये कोई भी चीज पर निर्भर नहीं होना। अलार्म के लिए बाबा ने स्लोगन था, कई बार आता है कि परमात्मा प्रेम ही अलार्म है जो तुम्हें अमृत वेले उठाता है। तो परमात्मा प्रेम अलार्म इधर फिट करना होता है, सबकॉन्शियस माइंड में, वो अपने आप उठाता है। जैसे हमारा कोई भाई आ रहा है, दोस्त आ रहा है, कोई आ रहा है सुबह 3:30 बजे नीचे अबू रोड, या 4 बजे आने वाला, तो हम अपने आप उठ जाएंगे और ले भी जाएंगे उसको अपने आप। वो क्यों? कोई अलार्म नहीं, वो जितना अलार्म लगाए तो उससे पहले 5 मिनट पहले उठ जाएंगे। वैसे होता है, इधर लगाया क्योंकि जो हम संकल्प करके सोते हैं ना, मुझे इतने बजे उठना है, सोते सोते ये पावरफुल संकल्प करके सो, तो वही टाइम पे वैसा हो जाएगा अपने ऊपर। तो ये होगी बात। हाँ नहीं, अभी ये सब बंद हो गया तो इस पर हम हलचल में नहीं आना चाहिए। एक दूसरा, इससे नुकसान, क्या क्या नुकसान? नुकसान तो भयंकर है,
सबसे बड़ा
समय ये आग है। इससे खाना भी पक सकता है, बढ़िया स्वादिष्ट, तो घर भी जल सकता है, उंगली भी जल सकती है, सारा जंगल भी जल सकता है, सारा शहर भी जल सकता है, जिंदगी मनुष्य पूरा खाक हो सकता है, ऐसी आ गई है। उसमें सब कुछ है, उसमें विकार भी है, तो इधर है तो उधर भी आ जाएंगे सब कुछ। तो वहां नेट, इसके लिए नेट पे कई लोग देखा ना, ब्राह्मण भी मतलब ऐसे ही बैठे हैं, कोई लक्ष्य नहीं है क्या ढूंढना है, बस बैठे हैं, एक के बाद एक क्लिक करते जाओ, कुछ ना कुछ खुलता जाता है, क्लिक करते जाओ खुलता जाता है। 10 बजे बैठे, ठीक है, ऐसे ही 5 मिनट के लिए बैठे, 12 बज गए। अब 12 बजने के बाद में कैसे अमृत वेला उठ पाओगे? और उठ भी गए क्योंकि आदत है लंबे समय की, उस आधार से उठ भी जाएंगे, और परमात्मा प्रेम है उसपे भी उठ जाएंगे, पर वो शक्तिशाली नहीं होगा। वो वाली बात है। इसके लिए जितना हो सके साधन, जो नेट और ये सारी चीजें, 8 बजे के बाद या 9 बजे के बाद अपने आप को एक प्रोग्राम देना, स्टॉप, कुछ नहीं करना है। ये सब जो मेल करना है कर दो पहले, जो कुछ भेजना है मैसेज वेसेज वो पहले ही कर दो। इमरजेंसी है, ऑफिशियल वर्क है, वो अलग बात है, वो तो करना है, जरूरी है, पर ऐसे ही उसमें टाइम वेस्ट है इसके लिए। हाँ दूसरा भी, नेट पे बैठना अर्थात हमारे मन में कुछ लक्ष्य हो कि मुझे ये चीज ढूंढनी है तो ही जाना है उसमें, नहीं तो वो ऐसा जंगल है एक जबरदस्त, वो गए उसमें वो गई भैंस पानी में, उसमें इतने सब मार्ग, छोटे छोटे सबवेद है कि कहां वो लैबिरिंथ होता है ना, भूल भुलैया, उसमें जाने के बाद में कैसे निकल पाओगे अंदर, बड़ा मुश्किल है उससे निकलना। कई लोग देखो यहां तो थोड़ा कम बर्थ सेंटरों पर और यहां वहां जहां कोई ज्यादा रिस्ट्रिक्शन, देखने वाला कोई नहीं है, उसमें लगे हुए हैं, और फिर क्या, एक देखा फिर दूसरा देखा फिर तीसरा देखा, खुलते ही जाता है, खुलते ही जाता है, खुलते ही जाता है, और फिर उत्सुकता, जिज्ञासा, क्या है क्या है क्या है, और कहीं ना कहीं भटक जाती है बुद्धि। मुझे एक बहुत पहले एक मेल आया था, उसने नाम नहीं लिखा था अपना, एक कुमार ने, रहता है सेंटर पे, पर उसने बहुत सारी ऐसी सारी चीजें लिखी थी उसमें कि मेरे मन में ऐसे ऐसे संकल्प आते हैं, मैं तो रहता हूं वहां पर सेंटर पे, पर उन बहनों के बारे में मुझे ऐसे ऐसे संकल्प आते हैं, विकार के संकल्प आते हैं, बहुत कुछ लिखा था उसने। तो इस तरह क्यों होता है ये? क्योंकि ये सब भी चालू रहता है स्लो स्लो, ये इतने सूक्ष्म है ना, ये देखा किसने, कुछ देखा वो मन में घुसा, और ज्ञान योग भी कर रहे एक तरफ, और वो सारी जो दिनचर्या है सेवा वाली वो भी एक तरफ, और टीवी भी देख रहे, मोबाइल में भी है, इंटरनेट में भी लगे हुए, 10 मिनट भी देखा उसका सूक्ष्म में, कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में वो अंदर चला जाता है, क्योंकि वो 3D है। किताब पढ़ी हुई, अव्यक्त वाणी पढ़ी हुई भूल जाएगा क्योंकि वो 2D, वो इतना नहीं है, पर वो जो वीडियो देखा, मूवी देखी, वो घूमता फिरता है, आवाज है उसमें, सारे सेंसेस इन्वॉल्व है उसमें, सुनते भी है, देखते भी है, और 3D है वो, एक्शन है, लाइव है, तो उसका जो असर सबकॉन्शियस माइंड में सीधा जाता है। उसको निकालना मुश्किल होता है, फिर उसके लिए बहुत बड़ा नए संस्कार क्रिएट हो रहे हैं वहां पे। और आज की मुरली का वरदान क्या है, कैच करो अपने ओरिजिनल संस्कारों। आज बोला ना पुरुषार्थ का आधार है कैचिंग पावर, जो आपके कल और आज की बात है, जो पहले के संस्कार थे उनको, वो यहां से वहां का दिखना, बीच का तो क्लियर चाहिए ना, तो ये तो दिख सकेंगे। और बीच में ही सारे 63 जन्म के तो है ही विकार के संकल्प, और इधर ब्राह्मण बनने के बाद भी नए विकार के संकल्प उसमें भर दिए, कुछ भी नहीं दिखता है, धुंधला बादल आ जाते हैं पूरे, कुछ भी नहीं दिख पाई देता है। इतना वो स्पष्ट दे, इसके लिए बुद्धि बहुत स्वच्छ चाहिए। इसके लिए हम क्या देख रहे हैं और क्या सुन रहे हैं, इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना। इसके लिए ये मोबाइल और ये सब जो चीजें है, इसका बहुत मतलब केवल ज्ञान और योग के लिए ही प्रयोग करना, या ऑफिशियल वर्क जो है, ये तीन ही काम है उसके, ज्ञान योग और ऑफिशियल काम। ज्ञान में क्लासेस, ज्ञान में उसे मुरली पढ़ना, व्यक्तवाणी पढ़ना, कोई क्लास अगर रिटर्न आता है वो पढ़ना, ज्ञान योग में कॉमेंट्री, या अपनी स्थिति ऊंची बनाने के लिए और भी कुछ अच्छी चीजें हो तो वो योग वाली, और तीसरा ऑफिशियल आपका जो है कुछ मेल करना है वो कर दिया खत्म, कुछ और करना है वो कर दिया खत्म। ऐसे ही बैठे हैं फेसबुक पे और उसमें नए नए फ्रेंड्स ऐड कर रहे हैं बिना मतलब के। अभी जिनको कर रहे हैं वो सब ज्ञानी है, एग्रीड, परंतु उनमें उतनी पावर नहीं है ना। उनसे दोस्ती करके आपकी स्थिति ऊपर नहीं उठने वाली, और ही नीचे गिरोगे। नए बंधन, बाबा कह रहे बंधन को खत्म करो, ये बंधन बनाना है, दुनिया को भूलो, यहां और याद कर रहे। तो ये जो भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स, एक व्हाट्सएप, ईमेल, ये सारी जो चीजें हैं बहुत उसको संभाल के, जो काम का है काम किया और खत्म, डिटैच्ड। ये हमारा इंटरनल पुरुषार्थ है, उसमें गए कि गए फिर डूब गए। तो मोबाइल, इंटरनेट, ये दोनों चीजें जुड़ी हुई है, टीवी, सीरियल्स, नए नए सीरियल्स, न्यूज, न्यूज के बीच में एडवर्टाइजमेंट्स, ये देखना है वो देखना है, उसमें एक्साइटमेंट, क्रिकेट मैच देखते समय देखा नहीं कितना एक्साइटमेंट आता है, आवेश आता है। सोचो वही स्थिति हमारी मृत्यु हो जाए तो, अशरीर अवस्था है, बाप की याद है, वो अवस्था है कि आत्मा शरीर को डिटैच होकर आराम से, जो अव्यक्त वाणियों में आ रहा है कि अंतिम समय तुम्हारा ये अवस्था, अंतमति सो गति, नहीं होगा, एक्साइटमेंट है उसमें, वो सारी चीजों में, फुटबॉल मैच, टीवी, क्रिकेट मैच, इसने इतने रन बनाए, उसने इतने रन बनाए,
उसको देखने के बाद भी तो कितना लंबा चलता है।
हाँ, और वो सारे जो उनके जो क्रिकेटर्स है वो कोई महान चरित्रवान व्यक्ति है तो है नहीं, कि जिनको आप देख रहे हो और उनको अपने जीवन का आदर्श बना रहे हो। उनके जीवन में चलो जो भी है, पर ज्ञान और योग है, क्या भगवान को जाना, पहला प्रश्न तो ये है। अच्छा, तथाकथित धार्मिक सीरियल है, बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे, पर क्या वो जो एक्टिंग कर रहा है उसका स्पिरिचुअल कैलिबर क्या है? आप कुछ सीखने से लिहाज से कर रहे हैं वो दूसरी बात है, कि हम उनसे कुछ सीखे, कुछ उनकी अच्छी बातें वो भी है, पर वो साथ साथ दूसरी भी चीजें साथ में आ जाती है। और जो सीरियल आज जो दिखा रहे हैं ना वो कोई सही नहीं है, रियल नहीं है, उसमें वो छेड़छाड़ है इतिहास के साथ, कुछ की कुछ उसकी प्रेम स्टोरी कुछ भी बना देंगे उसमें, उसको एक सीरियल को ऐसे 400 एपिसोड बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हैं। एक सीरियल को 1000 एपिसोड भी बना सकते हैं, जिसका कुछ है ही नहीं, इतिहास में वर्णन ही नहीं है कुछ, जो अभी नया जो चल रहा है ना, कौन सा, सब लोग 9 बजे बराबर जाके अशोका, ये इस तरह से सारे ब्राह्मण लगे हुए।
अभी तो कई बार डिस्कशन होता है, जैसे बहने करती है ना,
हाँ ऐसे डिस्कशन, हाँ उसके बारे में अभी क्या होगा, उसके ऊपर डिस्कशन
देखा नहीं,
हाँ फिर उसको अच्छा ज्ञान मिस हो गया होगा किसका, सेवा की वजह से आपूर्ति उसकी सप्लाई उसको, तो ये भी सेवा।
अपने काफी मुझे आमतौर पे ये चल माताओं बहन दी है ना,
हाँ नहीं ये सब जगह है, वो हमने एक बार भी कहा ना, एक सेंटर की बहन के हम तो बाबा को याद भी कहते हैं और वो सीरियल भी देखते हैं। नीचे जब खाते हैं तो बाबा को याद, ऊपर देखा तो सीरियल, नीचे खाते तो बाबा को याद, ऊपर देखा तो सीरियल, ऐसे भी है। कोई कोई तो कहते हैं हम बाबा को याद भी करते हैं और सीरियल भी करते, दोनों चीजें साथ साथ करते हैं।
कोई कहते उसमें ज्ञान ढूंढते,
हाँ उसमें ना नहीं, वो कहते हैं हम लोग को भाषण देना पड़ता है ना, तो उसमें कुछ कुछ अच्छे डायलॉग्स होते हैं। एक भाई ने मुझे ऐसा बताया था कि उसमें ना पावरफुल, वो कौन से सीरियल्स, वो दूसरे सीरियल के, धार्मिक वाले नहीं, वो डांस वाले सीरियल, और जिसमें एंकरिंग वाले जो सीरियल रहते ना, वो उसमें ना बहुत अच्छे, जैसे फिल्म फेयर और वो सारी जो चीजें, वो सब में ढूंढते रहते हैं, ऐसे कहा था। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, जैसे इधर ज्ञान की कमी है तो उधर।
प्रवचन और
वो तो चलो फिर भी उसमें थोड़ा तो ज्ञानवर्धन होता है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ एकदम। जैसे एक बार तो मैंने देखा दो ब्राह्मण आत्मा है, और दोनों में कौन सी चर्चा हो रही है, वो जो डांस कंपटीशन है उसमें कौन जीतने वाला है अभी, क्योंकि वो जो एक था उसका परफॉर्मेंस लास्ट इसमें अच्छा था, लास्ट डांस में, मतलब वो दोनों पहुंचे थे एकदम अंतिम स्पर्धा में, तो उसमें उसका अच्छा था, और वो एकदम फर्स्ट नाम से पुकार रहे थे, मतलब इतने परिचय थे उस दोनों का, जो जिन जो जीतने वाले, एक कह रहा था वो जीतेगा, वो कह रहा था नहीं नहीं वो उसका अच्छा है डांस।
फुल फोकस।
मतलब कितना उसमें एकाग्रता है, कि ये इतना उसके ऊपर चर्चा, कोई भी चीज के लिए चर्चा करना, मतलब उसकी स्टडी तो की होगी।
एक रस अवस्था
तो ये सारा जो है करना अच्छी बात है, चलो मान भी लिया कि ये बहुत अच्छा है, 1 घंटा का कुछ है हमने देखा अच्छा है, पर हमारा टाइम तो गया ना, कौन सा टाइम गया, वो उस समय जो अभी कल की अव्यक्त वाणी चली उसका हमने स्टडी किया, और आज अगर चला गया तो कल तो छोड़ ही दो, फिर 24 घंटे टाइम है कोई भी नई अव्यक्त वाणी जब चलती है उसका स्टडी करने का, या 6 ही घंटे ले लो सुबह से, अगर रात को अव्यक्त वाणी चली है तो आज 12 बजे तक का टाइम है, बाद में वो ये हो जाती है, फिर हम सोचते हैं क्या, साथ में चलेंगे छोड़ देंगे आपको। तो अव्यक्त वाणी जो भी है वो टाइम चाहिए ये सब चीजों के लिए, ज्ञान चिंतन के लिए टाइम चाहिए, मनन के लिए टाइम चाहिए, पढ़ने के लिए टाइम चाहिए, लिखने के लिए टाइम चाहिए, ये टाइम हमारा उस टाइम में चला, चलो वहां कोई विकर्म नहीं किया, पाप कर्म नहीं किया, पर टाइम तो गया, उसका क्या, टाइम गया, वो विदाउट टाइम वो सब चीजें होती नहीं है, इसके लिए हमारा टाइम इतना अमूल्य है कि देखना कि कहाँ कहाँ वो जा रहा है, ये चेकिंग ही इंपॉर्टेंट है। पहले ही तो सारे दिन भर में कहाँ कितना याद होता है, और उसमें जो टाइम मिल रहा है वो इसमें जा रहा है, ये तो एक टाइम वाला है, दूसरा है भोजन, भोजन में टाइम जाता है, नया नया बनाओ रोज, ये खाओ वो खाओ, कभी पेट भरा है क्या आज तक, दोपहर से अब तक पहला प्रश्न ये है किसका पेट भरा है बताओ। एक्साइटोटॉक्सिन्स, एक्साइट करने वाली है बहुत सारी चीजें, वो जब तक जा रही है ना चित्त शांत नहीं होगा, उसमें भी थोड़ी बहुत जबरदस्त साधना की आवश्यकता है, क्योंकि ब्रह्मचर्य बिना उसके कंट्रोल के नहीं हो सकता, पैलेट कंट्रोल, मतलब मैं जो भी आप ले रहे लो, परंतु उसमें डूब नहीं जाना है, बाबा ने जो कहा ना आसक्ति, बाबा ने जो कहा टोली खाओ, ऐसा नहीं कि हाँ, पर वो है, परंतु वही वाली बात है बैलेंस, टू मच में नहीं जाना है कोई भी चीज में, ऐसा नहीं कि वो आज है, आज सब कुछ अच्छा है तो बहुत अच्छा लग रहा है, कल वो नहीं रहेगा, दूसरा है वो भी अच्छा लगना चाहिए फिर, परंतु वो अच्छा लग के खाने की प्रैक्टिस ज्यादा है, इसकी कम है, फिर वो कैसे होगा, मुश्किल। हाँ तो बहुत सारी चीजें है उसमें, भूखे नहीं रहेंगे, दूसरा बनाएंगे ना कुछ, किचन है ना। तो ये एक बात बैलेंस वाली चीज है यहाँ पर, तो जो भी साधन है, 1 2 3 जो हमने गिनाए, टीवी, टीवी तो मेरे ख्याल से शायद ही कोई देखता होगा यहाँ पर, टीवी सेंटरों में तो चालू रहता है वहां पे, स्पोर्ट्स बहुत नहीं चालू होने तो स्पोर्ट्स फिर पता चलेगा, वो हमारे डाइनिंग हॉल में भी वही चर्चा चालू रहती है, हाँ वहां पर भी वही चर्चा, सब जगह वही चर्चा चालू रहती है, ब्राह्मणों की बात चल रही है, बाहर के लोगों की नहीं, ब्राह्मणों की। तो इसके लिए स्पोर्ट्स हो गया, ये सीरियल्स हो गए, कोई कोई अच्छे हैं, थोड़ा टाइम मिला 10 मिनट 15 मिनट ठीक है, थोड़ा सा मतलब, नहीं तो वो इतना ही पढ़ने के लिए सारा हो गया क्या, ज्ञानामृत पढ़ के, एक सारे मीडिया पढ़ के हो गया वो, प्यूरिटी वर्ल्ड रिन्यूअल ज्ञान की ये मैगजीन्स, एक दूसरी अव्यक्तवाणी है, तीसरा वो सारे लिखे हुए किताबें, स्पार्क की किताबें, जगदीश भाई की किताबें, वो सारा हो गया, वो हो गया तो करो फिर। दिस इज फिनिश तो देन और व्हाट टाइम है ये सब होके तो फिर कर लो फिर तो कुछ बात नहीं है फिर कोई तो जब इतना कुछ है करने के लिए अलग अलग जगह जैसे हमने भी ऐसे करके रखा है रूम पे भी अलग अलग जगह अलग अलग किताबें रखी है वहां गए तो वहां वो किताब पढ़नी है वहां गए तो वहां वो किताब पढ़नी है वो जहां जूते रखते हैं वहां के ऊपर एक किताब दूसरी है वो ओपड़ी में वहां दूसरी है उसके वहां नीचे दूसरी है इधर दूसरी है और पीछे दूसरी है उधर टर्न किया तो वो उधर नीचे देखा तो ये अलग अलग जगह अलग अलग ताकि और कोई टाइम ना मिले कुछ भी तो इतना कुछ पढ़ने के लिए है इतना कुछ चिंतन करने के लिए है तो हम टाइम वेस्ट करना इस मूर्खता है संगम युग का समय अमूल्य समय है और ये मिलन को हरदम बढ़ाते चलो बाबा कह रहे मिलन बढ़ाते चलो याद ऐसी हो याद को बढ़ाते चलो दिल का लगाव हो ये चित्र ये फोटो ये सब अलंकारिक भाषा है बहुत ही फिगरेटिव लैंग्वेज परंतु अंदर का जो भाव है वो एक ही है कि निरंतर साधना मगन रहे तपस्या मगन रहे हमारी अवस्था ऐसा करना है तो ये साधनों की बात थी शरीर की बात कि हर एक को पता है क्या खाने से बीमारी होती है कोई एटमोस्फियर कहाँ जाने से ज्यादा हो सकता है हाँ हाँ वो ज्यादा पता है पर फिर भी तो खा लेते हैं कर लेते हैं जबकि पता है कि ये हमको सूट नहीं होता है फिर भी खाओ और आ जाओ जब भी वो उधर तंदूरी रोटी बनती है पांडव भवन में बनती है ना उसके दूसरे दिन चार पांच पेशेंट आ जाते हैं लूज मोशन के साथ आना ही है ये एक दो दिन में तो आना ही है ज्यादा तो विदेशी आ जाते हैं विदेशियों को तो ये सूट नहीं होता है बहुत सारी चीजें फिर भी पर वो सामने दिखता है तो थोड़ा तो टेस्ट और टेस्ट करते करते थोड़ा और तो ये जो है ना क्या खाना क्या नहीं खाना क्या खाना मतलब वो अपने ऊपर है आप कहाँ और कैसे और कितना उसका भी प्लानिंग चाहिए फूड प्लानिंग टाइम मैनेजमेंट फूड मैनेजमेंट स्लीप मैनेजमेंट ये भी एक सबसे इंपॉर्टेंट है स्लीप दिन में किसी कारण से नींद नहीं हुई ऐसा हमारा कभी कभी होता है कि हमको दोपहर में कभी बिल्कुल नींद नहीं होती सबसे पहला काम मैं करता हूं शाम का सब कुछ छोड़ के सो जाओ क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है अगर नहीं सोए तो दूसरे दिन के अमृत वेले पर असर पड़ेगा उसका जो टाइम मिला है कुछ भी नहीं करना सब बाजू में सीधा सो जाओ वो क्योंकि रेस्ट अगर नहीं हुआ तो फिर उसका असर पड़ता है 3-4 घंटा नींद हुई खाली तो अमृत वेला कहां से होने वाला है शक्तिशाली बहुत मुश्किल है अच्छी पर्याप्त स्लीप चाहिए इसके लिए स्लीप मैनेजमेंट इज मस्ट स्लीप मैनेजमेंट टाइम मैनेजमेंट फूड मैनेजमेंट ये 3-4 चीजें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है तो साधनों के अधीन नहीं होना है साधनों के वश नहीं जाना हो जाना है वशीभूत नहीं हो जाना है टू मच में नहीं जाना है बीच का रखना है हद बाबा ने शब्द कहा हद में इसमें हद हो अनलिमिटेड ना हो ये इस तरह चीजें तो ये सारे मुरली के होमवर्क है शरीर को संभालना और भी कोई किसको याद आ रहा और भी कोई होमवर्क इतने तो आज इतना ही पूरा करते हैं इसी मुरली को थोड़ा और स्टडी करो और अलग रीति से थोड़ा होमवर्क निकालो इसमें से क्या क्या बाबा कहना चाहते हैं शब्द क्या है भाव क्या है अर्थ क्या है थोड़ा उसकी अलग से अपने आप में चर्चा करो हमने कुछ कुछ बातें और भी है जो छोड़ दी है वो पढ़ेंगे तो फिर अरे याद आएगा अरे ये भी है अरे ये भी है ये भी है ये भी है और उसको बिल्कुल अभी तो आज का दिन गया कल के दिन के अंदर ही हो जाना चाहिए वो काम क्योंकि ज्यादा समय गया ना फिर वो कोई हाथ भी नहीं लगाएगा उस मुरली वो वैसे के वैसे चली जाएगी बिस्तर के नीचे रखने के लिए या फाइल में अलमारी में या कहाँ गई किसकी तो पता भी नहीं इसके पहले की मुरली वो लोग कहाँ है पता नहीं ढूंढनी पड़ेगी कहाँ है ये हाल हो जाता है उसका तो इसके लिए वो उसको या अभी क्लास खत्म होते ही फिर से जाओ थोड़ी नजर लूंगा उसके ऊपर क्या है कहाँ है क्या है एक बार पढ़ के ही सो जाना सबसे बेस्ट वे है मुरली पढ़ते पढ़ते सोना बहुत अच्छी बात है वो सीधा अंदर चला जाता है पढ़ते पढ़ते ठीक है हाँ उसके बाबा ने वो कहा था कि ये ज्ञान सहज क्यों है उसके कुछ 6 कारण बताए थे और डिफिकल्ट क्यों है उसके 2 कारण बताए थे डिफिकल्ट इसलिए क्योंकि हमने इसी क्लास में चर्चा की है काफी डिटेल में पहला तो व्यर्थ संकल्प और दूसरा ज्ञान भूल जाता है व्यर्थ संकल्प मतलब हैमर चलाते रहते, ये क्यों हुआ, ये कब तक होगा, मुश्किल है, ये सारे व्यर्थ संकल्प है। समस्या के पहाड़ को हैमर से, व्यर्थ संकल्प के पहाड़ से तोड़ते रहते हैं, उसमें दिन मास लग जाते हैं। इसमें बाबा ने कहा था ड्रामा, एक सेकंड लगता है, ड्रामा लगाओ, एक बिंदु है वो वहां कहा था। और दूसरा जो आप कह रहे हैं वो है ज्ञान भूल जाता है, उसके लिए बाबा ने कहा था कि समय की डायरी में दिखाई नहीं देता, ज्ञान बुद्धि में है, डायरी में है, पर समय पर समय की डायरी में कुछ भी दिखाई नहीं देता। उसके लिए चार बातें करो, सबसे पहली बात तो रिवाइज करते रहो बार बार, ये जो अभी हम कर रहे हैं ये भी एक रिविजन ही है, ये कोई क्लास जैसा तो है नहीं, बस रिवाइज कर रहे हैं हम लोग सब मिलके, तो वैसा अपने आप में भी रिवाइज करते रहना। दूसरा अनुभव में लाना है उसको, अभी जो किया रिवाइज उसको अनुभव में लाओ। तीसरा चेक करो फिर, और फिर चेंज करो। ये बाबा ने उस मूल्य में चार विधियां बताई थी, सहज क्यों है और मुश्किल क्यों है और उसका निवारण कैसे करना है। तो इसका फिर पढ़ते रहना, ताकि वो कुछ याद भी रहे, ऐसा नहीं कि हम पढ़ा और गया। क्योंकि अभी देखो कल सुबह अव्यक्त वाणी दूसरी आ रही है, नहीं ये तो गई ना हाथ से ये अभी पकड़ी, थोड़ी बहुत पकड़ी थी तो वो आ गई उधर दूसरी आ रही है सुबह इनका नंबर है 70 की। तो क्योंकि एक जाता है नया आते रहता है रोज, इसके लिए टाइम केवल 24 घंटे है, चार पेज की मुरली है हर दिन, चार पेज की मुरली मास्टरी हो जानी चाहिए, और वो ऐसी मास्टरी हमेशा के लिए, 10 साल के बाद भी वो पता रहे, उसके लिए फिर उतनी गहराई से उसको स्टडी भी करना पड़ेगा। इसमें बहुत ज्यादा बुद्धिमान बनने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये बातें सारी हमने सुनी है, नया कुछ ये मुरली में अगर देखा जाए, मुरली को बाजू रखो, ये पॉइंट हमने कभी नहीं है हमारे लिए कि दिन भर चेक करो कितना समय बाप को याद किया, कितनी बार आया है, रोज ही आता है ये, पर इस मुरली में थोड़ा अलग ढंग से, क्योंकि अव्यक्त वाणी में है, उसका थोड़ा आकर्षण दूसरा है, पर ये बातें तो वही है। कभी हमने ये नया बात है कि मिलन अमूल्य है, ये नई बात है, हर रोज ही सुन रहे, ऐसा कौन सा पॉइंट है इसमें जो नया है, मन आनंद में आ जाता है, खुशी में आ जाता है, ये सारी सुनी हुई बातें, पर एक नए तरीके से, नए ढंग से, इसके लिए उसको उसी नए ढंग से, उसी उत्साह से, उसी उमंग से पढ़ना है। पर आना तो बस एक ज्ञान तो एक ही है, आत्मा समझ के बाप को याद करो बस, इसको इस तक पहुंचने के लिए ये सारा है, ये 69 से अब तक की अव्यक्त वाणी और वो साकार मुरली और वो जो सारा लिटरेचर का भंडार है, ये एक ही बात है, और ये सारी सेवा है किसके लिए, देह सहित देह के सर्वधर्म को भूल, स्वयं को आत्मा समझ, एक बाप को याद करो। ठीक है, ओम शांति।